الحمد لله جي الحمد لله ما بيخيتهم. اوكي سهي ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. आज हमारा रीडिंग डे है. लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम पहले जो अक्वा सबबेन का लास्ट टॉपिक है उसको खत्म कर लें और फिर हम इंशाल्लाह रीडिंग शुरू करेंगे. आई होप कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लेगा. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اقوى سببين کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. اس میں سے کافی سارے کیسز ہم نے ڈسکس کیے جن میں اقوى سببین کا کیس مد البدل اور مد عارض لسکون کے ساتھ, پھر مد البدل مد جائز منفصل کے ساتھ, مد البدل مد واجب متصل کے ساتھ, اور مد البدل مد لازم کے ساتھ. تو ان میں آپ نے دیکھا کہ سارے مد بدل کے ساتھ ہی اقوى سببین کا کیس بنا رہے ہیں. آج ہم پڑھیں گے جو تھوڑا سا ڈفرینٹ بھی ہے اور ناٹ ڈیفیکلٹ, لیکن زیادہ اٹینشن ڈیمانڈ کرے گا اور تھوڑا سا پیپر ورک اگر آپ کر لیں. انشاءاللہ اپنے ساتھ کوئی پیپر اور ساتھ میں پینسل رکھیے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو کیس ہے یہ ہوتا ہے ان بٹوین مد واجب متصل اینڈ مد العارض لسکون. ٹھیک ہے, اب ایسا ہوگا کب؟ جب کسی بھی ورڈ کے اندر ہمارے پاس مد الواجب المتصل آ رہی ہے, یعنی آپ کے پاس مد لیٹر ہے, مد لیٹر کے فوراً بعد اسی ورڈ کے اندر حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن جاتی ہے؟ مد الواجب المتصل. اور اگر آپ اس حمزہ کے اوپر ٹیمپرری سکون کر لیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہے, ورڈ میں تو آ رہا ہے مگر یہ اس ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہے. جی, تو یہ آپ کا جو حمزہ ہے ورڈ کا لاسٹ لیٹر ہے, جب آپ اس کو ٹیمپرری سکون دے دیں گے تو یہ مد عارض لسکون بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس مد لیٹر کے اوپر اقوى سببین آ گیا کہ ہم اس کو کس کے مطابق پڑھیں, کیا عارض لسکون کے مطابق پڑھیں یا واجب متصل کے مطابق پڑھیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ورڈ آتا ہے وَالسَّمَائِ. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں وَالسَّمَائِ تو یہ کون سی مد ہے؟ وَالسَّمَائِ آپ اس میں دیکھیں الف مدیہ آ رہا ہے اور الف مدیہ کے بعد حمزہ ایک ہی ورڈ میں آ رہا ہے تو یہ مد الواجب المتصل ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میں اس حمزہ کے اوپر سٹاپ کر لیتی ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ ٹیمپرری سکون آ جائے گا اور ٹیمپرری سکون سے رائٹ بیفور جو لیٹر آ رہا ہے وہ مد لیٹر ہے تو یہ مد عارض سکون بھی بن جائے گی, کیونکہ دونوں کی شرائط پوری ہوگی نا. مد واجب متصل کی شرط کیا ہے؟ ایک ورڈ میں مد لیٹر کے بعد حمزہ آ جائے. اور عارض سکون کی شرط کیا ہے؟ کہ ورڈ کا لاسٹ لیٹر ٹیمپرری سکون لے لے اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر مد لیٹر ہو. تو دونوں ہی مدود کی شرائط پوری ہو رہی ہیں, حمزہ تو موجود ہے اور حمزہ ساکن بھی ہو گیا اور اس سے پہلے کیا ہے؟ مد لیٹر ہے. اب اس الف کے اوپر جھگڑا ہو گیا ان بٹوین مد واجب متصل اینڈ مد عارض لسکون کہ کیا ہم اس الف کو کیا کریں, کیا ہم اس کو واجب متصل کے مطابق پڑھیں یا ہم اس کو عارض لسکون کے مطابق پڑھیں. تو ہم اس کو اقوى سببین کے کیس میں ڈال دیتے ہیں, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چارٹ ہے جس کے مطابق کچھ مدود سٹرانگ ہیں کچھ ویک ہیں. اور میں نے آپ کو ایک اور جو پوائنٹ بتایا تھا جس کی آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑے گی, وہ یہ کہ ہم ریڈنگ اس مد کے مطابق کرتے ہیں جو اسٹرانگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اسٹرانگ ہوتی ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک اور پوائنٹ بھی ساتھ رکھا تھا کہ یاد رکھیں کہ جو یعنی اس چارٹ کے مطابق تو ایک اسٹرانگنیس لیول آپ کو مل رہا ہے کہ سب سے اسٹرانگ مد لازم ہے, پھر اس کے بعد واجب متصل ہے, پھر اس کے بعد عارض لسکون ہے, پھر جائز منفصل ہے, دن بدل. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو یہ چارٹ ملتا ہے, لیکن جو آپ کی ریڈنگ ہے نا اس میں آپ اس مد کے مطابق پڑھتے ہیں جس کا پری ڈیسیژن اسٹرانگر یا لانگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی अगर एक मद है और उसकी लेंथ आपने शुरू से ज्यादा रखी हुई है और आप उसको ज्यादा रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, तो या तो वो चार्ट में ही स्ट्रांगनेस के हिसाब से हाईएस्ट लेवल पर होगी या हायर होगी, और अगर वो हायर नहीं भी है तो वो उस स्पेशल केस में स्ट्रांग बन जाएगी। ठीक है, अब हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। जैसे वर्ड है वो समा, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो मदूद आगी, कौन सी मद आगी, एक आगी मद वाजिब मुत्तसिल, दूसरी आगी मद आरद सुकून। जी अब मुझे आप बताइए वाजिब मुत्तसिल की लेंथ कितनी होती है? जी फोर और फाइव, नॉट सिक्स, सिक्स हटा दीजिए, सिक्स नहीं होती वाजिब मुत्तसिल, सिक्स नहीं होती, फोर हरकात होती है या फाइव हरकात होती है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि इन द ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में ना एक चार्ट सा रखें, जो हमजा की वजह से मदूद बन रही है ना, बदल को छोड़ के, जायज वाजिब सलात अल कुबरा तीनों जो है वो फोर फाइव है, वो सिक्स नहीं जाती, वो फोर फाइव है, दोनों में से एक नंबर डिसाइड करें और तीनों मदूद को सेम रखें एक सिटिंग की रीडिंग में। जो टेम्पररी सुकून से बन रही है ना, आरिद एंड लीन, ये 2, 4, 6 होती हैं, तीनों आपके पास यानी इवन नंबर्स आ रहे हैं, 2, 4, 6। ठीक है, हाँ जी, तो ये इस तरह से आपने याद रखनी है। ओके, अब 4, 5 होगी मद वाजिब मुत्तसिल की, मद आरिद सुकून की लेंथ लिखिए कितनी होती है। जी बिल्कुल 2, 4, 6। ठीक है, आपके पास 2, 4, 6 की ऑप्शन आ जाती है मद आरएल सुकून के लिए। अब आपको ना मैं बताती हूं कि आप इसको ना अपने पेपर के ऊपर इस तरह से लिखिए कि ब्रैकेट टाइप में ना, ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा, वरना आपको ये मुश्किल लगेगा इसको समझना, इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली करते हैं इंशाल्लाह। ये ना इस तरह से आप लिखिए, ठीक है, 4, 5 एंड 2, 4, 6। आपने दो ब्रैकेट्स बना ली, एक ब्रैकेट में आप लिख दीजिए मदुल वाजिबुल मुत्तसिल और दूसरे में लिख दीजिए मद आरिद सुकून। मद वाजिब मुत्तसिल के बिल्कुल नीचे लाइन में आप लिखिए 4, 5 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरी ब्रैकेट में आप लिखिए 2, 4, 6। ठीक है, जो मद आरिद सुकून के नीचे आ रहे हैं उसके नीचे ब्रैकेट लगा के आप लिखिए 2, 4, 6। ये मैंने टाइप भी किया, इसको इस तरह से लिखे। अब आप देखें कि हम ना एक नंबर एक ब्रैकेट में से उठाते हैं और दूसरा नंबर दूसरी ब्रैकेट में से उठाते हैं, क्योंकि हमारे पास रीडिंग के पॉसिबल पेयर्स बनेंगे। सही है, रीडिंग के हमारे पास क्या हो जाएंगे, पॉसिबल पेयर्स बन जाएंगे। इसमें हमारे पास ये हो सकता है, एक पॉसिबल तरीका क्या है कि आप यानी मद आरिद सुकून को 2 हरकात पढ़े और वाजिब मुत्तसिल को 4 हरकात पढ़े। इसका क्या मतलब है कि आपने जो प्री डिसीजन रखे हैं वो क्या है, आरिद सुकून 2 एंड वाजिब मुत्तसिल 4। राइट, चार्ट में कौन सी स्ट्रांग है, चार्ट में जो स्ट्रांग है वो मद वाजिब मुत्तसिल है। तो इस केस के अंदर, इस केस के अंदर हम किससे स्टॉप करेंगे, मद वाजिब मुत्तसिल के अकॉर्डिंग, और जब हम वर्ड व समा पर रुकेंगे तो हम कौन सी हरकत करेंगे, 4। सही है, यानी 2 जो है मद आरिद सुकून वीक है, उसकी लेंथ भी कम है, तो आपने मद आरिद सुकून नहीं पढ़नी, आप मद आरिद सुकून का प्री डिसीजन 2 था, मद वाजिब मुत्तसिल का प्री डिसीजन 4 था। इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, केस नंबर 1, इसको आप नंबर 1 डालिए, ये पहला पॉसिबल तरीका है कि इसके अंदर अगर आपका प्री डिसीजन ये है तो इसमें आपका स्टॉप मद वाजिब मुत्तसिल के अकॉर्डिंग होगा 4 हरकात। राइट, कैसे, वस्समा यू, ठीक है, 4 हरकात से आप स्टॉप करेंगे। केस 2, ऑप्शन 2, को वही रखें, टू हरकात, वाजिब को चेंज कर दें, ठीक है? यानी जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें से 5 ले लीजिए और जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें से 2 ले लीजिए, उसको उसमें से 2 ही रखते हैं। अभी 2 के साथ 5 बना लेते हैं, फिर हम नंबर चेंज कर देंगे, 2 छोड़ देंगे। 2 के साथ 5 बन गया, यानी इसका क्या मतलब है? केस 2, 2 एंड 5, केस 2 इसका क्या मतलब है? वाजिब मुत्तसिल 5 हरकात, एंड आरएल सुकून का जो प्री डिसीजन है वो 2 है। यानी आरएल सुकून का प्री डिसीजन अभी भी सेम है, आप उसको 2 हरकात पढ़े हैं और वाजिब मुत्तसिल को आपने कैसे पढ़ा? 5 हरकात। इस केस में आपका स्टॉप वाजिब मुत्तसिल के अकॉर्डिंग होगा 5 हरकात, ठीक है? वाजिब मुत्तसिल के मुताबिक ही पढ़ा और कितनी हरकात पढ़ा? 5 हरकात पढ़ा। तो अगर अब हम इस स्पेशल तरीके के साथ अगर पढ़े हैं, ये हमारा प्री डिसीजन है, तो हम कैसे स्टॉप करेंगे? वसमा 5 के साथ स्टॉप करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा जारी होगी। अब 2 के साथ हमने दोनों पेयर्स बना ली, इसलिए 2 को छोड़ दीजिए। 2 के बाद वाला नंबर ले लेते हैं हम 4, ठीक है? अब हमने क्या उठाया? 4, केस 3 आ गया अब हमारे पास। आरिद सुकून का 4 उठा लिया और वाजिब मुत्तसिल के लिए भी 4 उठा लीजिए, या 4 4 का पेयर बन गया आपके पास, ठीक है? यानी आपका प्री डिसीजन वाजिब मुत्तसिल के लिए 4 हरकात हो गया और आरिद सुकून के लिए भी 4 हरकात हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग? पहले तो पढ़, एक्सेलेंट, वेरी गुड, मत भी सबबैन हो गया, वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक लकुम। जी, क्योंकि दोनों मदूद की लेंथ अब सेम आ गई ना, दोनों मदूद की लेंथ सेम आ गई, 4 है, एक आरएल सुकून के लिए भी आपने 4 रख लिया, वाजिब मुत्तसिल के लिए भी 4 रख लिया, तो इसके ऊपर जो स्टॉप होगा आपका वो क्या होगा? मद बी सबबैन, यानी दोनों मदूद इकट्ठी अपनी शराइत को पूरा करें। अब दोनों मदूद आप करें, वाजिब भी करें हैं एंड आरद भी करें, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? मद बी सबबैन। फिर अभी आपने आरद केस 4 ले लेते हैं। केस 4 में क्या है? केस 4 में आ गया कि आपने आरिफ के लिए 4 ही रखना है और वाजिब के लिए क्या करना है? 5 ले लें। अब नंबर चेंज हो गया, आरिफ के लिए 4 रखा है, वाजिब के लिए 5 रख लिया है, अब क्या करेंगे हम? आप ही बताइए, अब कैसे झगड़ा खत्म होना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, वाजिब मुत्तसिल के मुताबिक हमारा स्टॉप होगा 5 हरकत, सही, 5 हरकात स्टॉप होगा। ये आपके पास बिल्कुल चार्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मद वाजिब मुत्तसिल के मुताबिक स्टॉप होगा 5 हरकात के साथ। अब आपके पास केस नंबर 5 आ गया, ठीक है? 2 के साथ भी आपने वाजिब मुत्तसिल के दोनों पेयर्स बना लिए, 4 के साथ भी आपने वाजिब मुत्तसिल के दोनों पेयर्स बना लिए। आपको याद है मैथ्स में हम इस तरह के क्वेश्चंस भी करते थे ना, पॉसिबल पेयरिंग, अगर आप उस हिसाब से करें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। 2 4, फिर 2 5, 4 4, 4 5 एंड फिर 6 4 एंड 6 5, तो ये आपके पास 6 पॉसिबल पेयर्स बनते हैं इनके। तो जो नेक्स्ट पेयर है 5, पेयर नंबर 5, वो क्या है? 6 के साथ अब आप बनाएंगे। 6 के साथ पहले कौन सा पेयर बनाएंगे? 6 4, ठीक है? 6 4 का क्या मतलब है कि मदारिद सुकून का प्री डिसीजन 6 है एंड वाजिब मुत्तसिल का प्री डिसीजन 4 है। अब ये वाला केस हमने पहले नहीं किया, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? आरिद सुकून क्यों? आरिद सुकून क्यों करनी चाहिए? हालांकि चार्ट में तो वो आपके पास वाजिब से लोअर है, यानी वाजिब से वीकर है ना, आरिद सुकून लेंथ लॉन्गर है, दैट्स गुड। जी बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपका प्री डिसीजन किसी खास मत के लिए ज्यादा हो जाता है और वो चार्ट में कमजोर भी है तो वो स्पेशल केस में स्ट्रांग हो जाएगी। अब इस स्पेशल केस में आपकी जो मत वाजिब मुत्तसिल है, वाजिब मुत्तसिल है, हालांकि वो स्ट्रांगर है मगर वो वीक होगी। क्यों? इसलिए कि आरिद सुकून का प्री डिसीजन आपने 6 रख लिया, अब वो लेंथ में बड़ी हो गई है और वो स्ट्रांगर बन गई है, वो स्ट्रांगर थी नहीं, वो स्ट्रांगर बन गई है, इसमें हम इसको ना कहते हैं कि ये मदलाजिम के ताबे हो गई है, यानी सिक्स हरकात जब आपने मदारिद को रखा तो वो मदलाजिम की तरह पढ़ी जा रही है, मदलाजिम की हरकात को फॉलो कर रही है, तो इस वजह से वो स्ट्रॉन्गर हो गई है। इस स्पेशल केस में जब आप स्टॉप करेंगे तो आप क्या करेंगे, मदारिद सुकून के मुताबिक स्टॉप करेंगे सिक्स हरकात के साथ, ठीक है। और आपके पास सिक्स पॉसिबल ऑप्शन क्या बन रही है, सिक्स पॉसिबल ऑप्शन क्या बन रही है, मद वाजिब मुत्तसिल आपकी फाइव हरकात होगी और मद आरिद सिक्स है। अब इस स्पेशल केस में भी आपकी आरिद, हालांकि वो वीकर है मगर वो स्ट्रांग हो जाएगी और आप आरिद सकून के मुताबिक पढ़ेंगे सिक्स हरकात, ठीक है। ये आपका लास्ट वाला केस था, इसको हम तो पेयर्स बताए ना, सिक्स पॉसिबल पेयर्स बताए जिसमें आरिद सकून टू वाजिब मुत्तसिल फोर, फोर के साथ स्टॉप करें, आरिद सुकून टू वाजिब मुत्तसिल फाइव, फाइव के साथ स्टॉप करें, आरिद सुकून फोर वाजिब मुत्तसिल फोर, फोर के साथ पढ़ें, मदबी से बबई, आरिद सुकून फोर वाजिब मुत्तसिल फाइव, फाइव के साथ पढ़ें, वाजिब मुत्तसिल, आरिद सुकून सिक्स वाजिब मुत्तसिल फोर, आरिद के साथ पढ़ें, आरिद सुकून सिक्स एंड वाजिब मुत्तसिल फाइव, आरिद सुकून के साथ पढ़ें, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरह से बताया, इसको थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। इस वर्ड के ऊपर या आप सेंटेंस लिख लें, इस वर्ड के ऊपर हम तीन मुमकिन तरीकों से स्टॉप करते हैं छह पॉसिबल पेयर्स में, ठीक है। ये छह पॉसिबल पेयर्स मैंने आपको बताया ना अभी, इनमें स्टॉप के तरीके तीन आ रहे हैं, तीन लेंथ्स बन रही है आपके पास। कौन कौन सी लेंथ्स बन रही है स्टॉप करते हुए, कौन कौन सी लेंथ्स बन रही है, फोर फाइव सिक्स, वेरी गुड, ठीक है। आपके पास तीन पॉसिबल फोर फाइव सिक्स, टू नहीं बन रही, टू नहीं है, बात समझ में आई आपको। जब आप वक्फ करें है ना, तो वह समा इस वर्ड के ऊपर आप तीन पॉसिबल तरीकों के साथ वक्फ कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड अक्व सबबैन में चला गया ना, इसके ऊपर आप फोर हरकात से रुक सकते हैं। ये जो हमने छह पॉसिबल पेयर्स निकाले ना, इसमें ये जो आपने ग्रुपिंग की है, इसके ऊपर जिस लेंथ से हम स्टॉप करें ना, उसको टिक मार्क कर दीजिए। यानी जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखा है टू फोर का पेयर, यानी टू फोर से क्या मुराद है कि आरिद सुकून टू और फोर वाजिब मुत्तसिल, तो फोर के ऊपर टिक कर दीजिए कि हम फोर से पढ़ें, टू फाइव के पेयर में फाइव से पढ़ें, फोर फोर के पेयर में दोनों को टिक कर दीजिए, ठीक है, फोर फाइव के पेयर में फाइव को टिक कर दीजिए, सिक्स फोर के पेयर में सिक्स को टिक कर दीजिए, सिक्स फाइव के पेयर में सिक्स को टिक कर दीजिए। तो पढ़ने के जो तरीके हैं वो क्या है, तीन है, फोर हरकात से पढ़े हैं, फाइव हरकात से पढ़े हैं, सिक्स हरकात से पढ़े, इन तीन पॉसिबल तरीकों के साथ हम पढ़े, ठीक है। और कितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं, छह, जो प्री डिसीजन के ऑप्शंस बन रहे हैं वो सिक्स बन रहे हैं हमारे पास। कोई टू फोर से पढ़ा होगा, कोई टू फाइव से पढ़ा होगा, कोई फोर फोर से पढ़ा होगा, कोई फोर फाइव से पढ़ा होगा, यानी आपके पास तरीके जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, जो प्री डिसीजन है उनके मुताबिक आपके पास सिक्स पॉसिबल ऑप्शन आ रहे हैं, जबकि स्टॉप उनमें से आप तीन तीन लेंथ आ रही है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक वर्ड के ऊपर हम तीन मुमकिन तरीकों से रुक सकते हैं। नंबर वन, फोर हरकात, आगे एरो लगा दीजिए, फोर हरकात कब रुकेंगे, फोर हरकात से कब स्टॉप करेंगे, जी आंसर कीजिए, फोर हरकात से इस वर्ड के ऊपर कब रुकेंगे, कौन से प्री डिसीजंस होंगे। जी टू फोर में, हाँ टू फोर में एक और पॉसिबल तरीका भी है ना, वन एंड थ्री पेयर नहीं है कोई, प्री डिसीजन ऑफ मुत्तसिल एस फोर, व्हाट अबाउट द प्री डिसीजन ऑफ आरिद, आरिद भी तो मैटर करता है ना, अगर मुत्तसिल का प्री डिसीजन फोर है मगर आरिद का सिक्स है, तो आप तो फोर से नहीं रुक सकते। अच्छा, वन एंड थ्री केसेस, वन एंड थ्री केसेस, जी ये सही है आंसर, यानी फर्स्ट केस एंड थर्ड केस जी, इसको मैं, हाँ जी, इसमें क्या बन रहा है, फर्स्ट केस था अगर आरिद लसकून का प्री डिसीजन टू हो और वाजिब मुत्तसिल का प्री डिसीजन फोर हो, आपका स्टॉप फोर होगा आरिद वाजिब के मुताबिक, ठीक है। अगर आरिद लसकून का प्री डिसीजन टू है और वाजिब मुत्तसिल का प्री डिसीजन फोर है तो आपका स्टॉप वाजिब मुत्तसिल के मुताबिक होगा फोर हरकत। अगर दोनों का प्री डिसीजन फोर है तो आपका स्टॉप फोर होगा मदबी सबबैन। यानी हम फोर हरकात कौन से दो पेयर्स में रुक रहे हैं, जब वाजिब फोर रह रहा है, आरिद टू फोर में से कुछ हो रहा है, राइट। आप इसको लिख लें, वाजिब मुत्तसिल का प्री डिसीजन फोर है एंड आरिद लिसकून का प्री डिसीजन इधर टू और फोर, देन हाउ हाउ टू स्टॉप देयर, फिर आप फोर हरकात के साथ स्टॉप करते हैं। एक केस में मदबी सबबैन बन जाती है, एक में वाजिब मुत्तसिल फॉलो हो रही होती है, ठीक है। इसके अंदर दो पेयर्स आ गए हैं, पहले हमने सिक्स को अलग अलग डिस्कस किया ना, अब हम ये स्टॉप्स में हर स्टॉप के अंदर दो दो पेयर्स डाल देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। पहला स्टॉप क्या था, फोर हरकात। फोर हरकात में कौन से दो पॉसिबल पेयर्स आ गए, वाजिब मुत्तसिल का प्री डिसीजन फोर है, आरिद लसकून का प्री डिसीजन टू है, तब भी स्टॉप फोर वाजिब से होगा। अगर आरिद लसकून का प्री डिसीजन फोर है तब भी स्टॉप फोर से होगा मदबी सबबैन। टू एंड फोर एंड फोर एंड फोर, गुड, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड केस है कि आप स्टॉप कर सकते हैं फाइव हरकात के साथ, यानी इस वर्ड के ऊपर स्टॉप हो सकता है फाइव हरकात के साथ। अब इसके अंदर आपके पास कौन कौन से पॉसिबल पेयर्स आ रहे हैं, जी, जब हम फाइव हरकात के साथ रुकेंगे तो कौन कौन से पॉसिबल पेयर्स में आप फाइव से रुकेंगे, नहीं फाइव सिक्स में तो देखिए आप सिक्स ज्यादा हो रहा है ना, फिर तो सिक्स पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, वेरी गुड, टू एंड फाइव, फोर एंड फाइव। अगर आपका पॉसिबल तरीका, आपका पॉसिबल जो पेयर है वो फाइव हरकात है वाजिब का, फाइव हरकात किसका है, मद वाजिब का, और मद आरिद सुकून या टू रखी हुई है आपने या फोर रखी हुई है, दोनों केसेस में आपका स्टॉप वाजिब मुत्तसिल के साथ होगा फाइव हरकात। गेट द पॉइंट, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब थर्ड तरीका था स्टॉप करने का सिक्स हरकात। अब जब हम सिक्स हरकात, यानी अगर आप सिक्स हरकात स्टॉप कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, आपके पास कौन से पॉसिबल पेयर्स होंगे तो आप सिक्स के साथ स्टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल, सिक्स एंड फोर, सिक्स एंड फाइव, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आरिद सुकून का प्री डिसीजन सिक्स है और वाजिब मुत्तसिल फोर है या फाइव है, वाजिब मुत्तसिल छोटी रहेगी इसलिए आप इसको छोड़ देंगे और आपका स्टॉप हो जाएगा सिक्स के साथ, ठीक है। तो अब बात समझ में आई, सबको आई है या कुछ को नहीं आई है, आप में से सबको समझ में आ गई है बात, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें, और ये जो केस है ये आपको बहुत ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है माउन, तो जब आप स्टॉप करेंगे इसके ऊपर मा, तो ये केस वही बन रहा है वाजे मुत्तसिलन आरिद सुकून, जैसे मैंने आपको बताया असमा, फिर इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड है सू इन, तो सू सी आ सी, ठीक है, या मदिया और वा मदिया के साथ भी आ रहे हैं, बिल्कुल। जो स्ट्रांग होगा उसके ऊपर रुकेंगे, आप ये ऐसे याद रखें, जिसका प्री डिसीजन ज्यादा होगा ना, जिस मत का प्री डिसीजन ज्यादा होगा, या तो वो चार्ट में स्ट्रांग है या वो स्ट्रांग हो जाती है उस स्पेशल केस में, और फिर हम उसके मुताबिक रुकते हैं, ठीक है? बिल्कुल, जैसे वर्ड है अउलिया, बिल्कुल। मैं इसको, मैं सारे को ना थोड़ा सा क्विक एक रिव्यू करती हूँ, आप फिर से एक दफा सुन लीजिए। अगर हमारे पास किसी भी वर्ड में मद वाजिब मुत्तसिल आरद लसकून इकट्ठे आ जाएं, ऐसा तब होता है जब वर्ड का लास्ट लेटर हमजा आ रहा हो और आप हमजा के ऊपर स्टॉप कर लें और सेकंड लास्ट लेटर मद लेटर है, ठीक है? तो वाजिब मुत्तसिल भी आ जाती है, आरद लसकून भी आ जाती है। फिर आप क्या करते हैं, आप अक्व सबब इनमें इस केस को डाल देते हैं। वाजिब मुत्तसिल को पढ़ने के दो तरीके हैं, 4 और 5, और आरद लसकून को पढ़ने के 3 तरीके हैं, 2, 4, 6, ठीक है? अब यहां पर इस वर्ड के लिए जो प्री डिसीजन बनते हैं ना, वो आपके 6 प्री डिसीजन बनते हैं। नंबर 1, आरब को 2 रखें, वाजिब को 4 रखें, आपका स्टॉप वाजिब पर होगा 4 हरकात के साथ। नंबर 2, आरब को 2 रखें, वाजिब को 5 रखें, आपका स्टॉप होगा 5 हरकात वाजिब मुत्तसिल के साथ। नंबर 3, आरब को 4 रखें, वाजिब को 4 रखें, आपका स्टॉप 4 से होगा मदनी सबबैन। नंबर 4, आरब को 4 रखें, वाजिब को 5 रखें, आपका स्टॉप 5 से होगा वाजिब मुत्तसिल के मुताबिक। नंबर 5, आरत को 6 रखें, वाजिब को 4 रखें, तो आपका स्टॉप होगा आरत के मुताबिक 6। नंबर 6, आरत को 6 रखें, वाजिब को 5 रखें, तो आपका स्टॉप होगा आरत सुकून के मुताबिक 6। अब आरत सुकून चार्ट में स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जब आपने उसकी लेंथ को लंबा कर दिया ना, वाजिब से 4-5 से ज्यादा कर दिया, 6 कर दिया, यानी 4-5 वाजिब की है, उससे आप बढ़ा दिया आपने लेंथ आरत सुकून की, 6 कर दी, तो सूरत में फिर ये आरद सुकून स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है? अच्छा, ये जो मैंने आपको दूसरे तरीके बताए, इसमें ये है कि आपके पास इन इन 6 तरीकों का अगर आप देखें ना, तो वक्फ के कौन से तरीके आ रहे हैं? 3 तरीके आ रहे हैं, एक 4 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 6 आ रहा है। 3 आपके पास लेंथ तो वक्फ की 3 आ रही है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 के साथ स्टॉप कब कब हुआ, कौन कौन से पॉसिबल ऑप्शंस में हुआ? नंबर 1, जब आरत 2 थी और वाजिब 4 थी, तो वाजिब के मुताबिक 4 से स्टॉप हुआ। नंबर 2, जब आरत भी 4 थी और वाजिब भी 4 थी, जब दोनों 4 थी, तब भी आपका स्टॉप 4 से हुआ, मद भी सबब बनी जब बनी, ठीक है, तब भी आपका स्टॉप 4 से हुआ, राइट? ये दो केसेस जो है वो 4 के साथ आपको स्टॉप दे रहे हैं। 5 के साथ स्टॉप कब हुआ? जब आरत सुकून 2 थी, वाजिब 5 थी, जब आरद सुकून 4 थी, वाजिब 5 थी, इन दो केसेस में आपका स्टॉप 5 से हुआ। 6 से स्टॉप कब हुआ? ये सिर्फ ऊपर वाले को मैं थोड़ा समराइज कर रही हूं, ठीक है? 6 के साथ आपका स्टॉप कब हुआ? जब आरद 6 थी और वाजिब 4 या 5 में से कुछ थी, ठीक है? तो फिर आपका स्टॉप आरद के मुताबिक हुआ, 6 हरकत। समझ में आई बात? जी, अभी अगर कोई सवाल है तो करें। ये अकवा सबबैन हमारा खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, यही इसके कुछ स्पेशल केसेस थे। आप कर सकते हैं होमवर्क के तौर के ऊपर एटलीस्ट 1 वर्ड फाइंड आउट करके उसके ये 6 पॉसिबल तरीके बनाएं, और फिर आप बताएं कि किस तरह से हम इसको रुकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, फिर इंशाल्लाह मैं इसको ना चेक कर लेती हूँ, सही? और अगर किसी को कोई वर्ड मिल रहा है और अगर आप शेयर करना चाहते हैं ये अकवा सबबैन के केस का कोई वर्ड, तो आप कर सकते हैं। इसके आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, हर हर पेज के ऊपर आपकी इसको कोई ना कोई इसकी जो है वो एग्जाम्पल मिल ही रही होगी, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, यही वर्ड जैसे समा का वर्ड ही है तो बहुत ज्यादा आ रहा है कुरान पाक में। जी, होमवर्क में एटलीस्ट 1 वर्ड आप ना डिस्क्राइब कीजिए, यानी एक कोई ऐसा वर्ड ढूंढे और थोड़ा डिफरेंट सा ढूंढे, यानी असमा ही को मत एक्सप्लेन कीजिए, मगर कोई डिफरेंट सा वर्ड ढूंढ के तो आप उस पर बताएं कि इस पे अकवा सबबैन हो रहा है इन बिटवीन मद वाजिब मुत्तसिल आरद लसकून, और फिर उसके 6 केसेस बताकर, अलग अलग पूरे 6 केसेस बताएं और बताएं हर केस में हम किस पॉसिबल लेंथ के साथ स्टॉप करें, ठीक है? एटलीस्ट 1 वर्ड आप करें, हर बंदा 1 वर्ड करेगा ना, तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप में आपके पास काफी सारे, अगर आप बाकियों के भी होमवर्क्स पढ़ते हैं तो आपके पास काफी सारे वर्ड्स आ जाएंगे इनको पढ़ने के लिए ना। सेम वर्ड विथ सिक्स एग्जाम्पल्स. मुझे नहीं समझ आया. सेम वर्ड मतलब, हाँ कोई एक वर्ड ले लें, जैसे द का, ये भी किसी सिस्टर ने लिखा ना वर्ड द का, तो ये जो वर्ड है इसमें भी है वाजिब मुत्तसिल भी है, आरदले सुकून भी है. इसके अब जो ये सिक्स केसेस है ना ये लिखिए. हाँ बिल्कुल, वो सिक्स केसेस आपने एक ही वर्ड के मेंशन करने हैं, एक वर्ड के ही सिक्स पॉसिबल ऑप्शंस जो है वो मेंशन करें और बताएं कि हर पॉसिबल ऑप्शन में आपका स्टॉप किस तरीके के साथ है. राइट, ये हम स्टॉप करने का तरीका पढ़े, क्योंकि कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ पर सिर्फ एक मद है, वाजिब मुत्तसिल, आरद नहीं बनती. कॉन्टिन्यूएशन में आरद नहीं बनती. सही, आरदले सुकून तभी बनती है जब आप स्टॉप कर रहे होते हैं. यहाँ पे जैसे सूरतुल कलम में भी वर्ड आ रहे ना, हमाजिमशाइम बिनमीम आय नंबर 11 में, यहाँ पे भी ये मशा, ये जो है ये अकवा से बबेन बन रहा है यहाँ पे ना, मद आनद सुकून का और वाजब मुत्तसिल का. ये सारे केसेस आपको नहीं याद रखने पड़ते, आपका केस तो वही होगा ना जिससे आपका प्री डिसीजन है. आप इन छह में से किसी एक तरीके के साथ पढ़े होंगे, आप सारे तरीकों के साथ तो नहीं पढ़े होंगे. जैसे लेट्स से मैं आपको अपना बताती हूँ, अब चूंकि ये बहुत सारी चीजें होती है ना, और जब आप कुरान पाक रीड कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं, थोड़ा बहुत तर्जुमा रखना पड़ता है कुछ सेंस लेने के लिए. तो जब मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ तो ये सारी चीजों से अपने जहन को बचाने के लिए, और फिर दिल में ये भी होता है कि परफेक्शन के साथ बंदा पढ़े, यानी आप मदूद की बहुत सारी गलती ना कर रहे हो, तो एक लेंथ रख लेते हैं. जैसे फोर हरकात, मैं फोर हरकात से पढ़ी हूँ. क्यों इसलिए फोर हरकात से पढ़ी हूँ, क्योंकि जायज मनफसल भी फोर हरकात से पढ़ी जा सकती है, वाजिब भी पढ़ी जा सकती है, सलातुल कुबरा भी पढ़ी जा सकती है, मतआरज सुकून भी पढ़ी जा सकती है, मदलीन भी पढ़ी जा सकती है. ठीक है, फोर फोर हरकात से जब आप पढ़ते हैं तो सारी मदूद आपकी फोर है. अब जब आप फोर से पढ़ते हैं ना तो आपको कोई इशू नहीं है, जब आप वक्फ करेंगे तो भी फोर है. मद भी सबबैन, अगर आरद सुकून और बदल का केस आ रहा है तो भी आप फोर करेंगे, क्योंकि अकवा सबबैन उसमें फिर आरद सुकून बड़ी है तो भी फोर से वक्फ करें. राइट, और बाकी केसेस में कोई ऐसा इशू नहीं होता. इट्स रियली इजी टू रिमेम्बर, अगर आप फोर फोर का केस रख रहे हैं ना, यानी फोर वाला केस रख रहे हैं, सारी मदूद फोर है, फिर बदल उसमें आरद और लीन में भी आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होती कि अच्छा लीन को छोटा रखें या बराबर रखें, तो फोर फोर बराबर रखें आप उसको. आप अगर एक लेंथ को मशरक में लेके जाएंगे दूसरी मगरब में तो फिर थोड़ा आपको ना बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा. तो जब कुरान पाक पढ़े तो इतना सिंप्लीफाई कर दें उसको कि आपको ना तजवीद पे भी फोकस हो और थोड़ा बहुत आप उससे इंस्पिरेशन भी ले रहे हो. ठीक है, यानी आप उससे अपनी रूह को भी ताजा कर रहे हो, तो वो सिर्फ यही तो नहीं कि आपने सिर्फ तजवीद को फोकस करना है, असल जो इसका मकसद है वो भी हमारे जहन में होना चाहिए ना. तो ये जो फोर 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 वाला केस है ये बहुत आसान है, सारे जो मदूद हैं वो फोर के ऊपर एग्री हैं, तो फिर आपकी जो रीडिंग है वो भी स्मूद हो जाती है और आसान हो जाती है. जी बिल्कुल, जैसे अब आप लोग तजवीद के स्टूडेंट्स है ना, तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगी कि अच्छी रीडिंग के लिए ना, जैसे अब जब मैं स्टूडेंट थी, यानी मैं जब सीख रही थी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख रही हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं तजवीद को इस तरह से प्रैक्टिस करती थी कि मुझे सफात में प्रॉब्लम है या मखारिज के अंदर प्रॉब्लम है या ठीक नहीं हो रहा या ज्यादा प्रैक्टिस एफर्ट की जरूरत है, तो उस वक्त ना मैं तजवीद को अलग टाइम देती थी. उस टाइम में मैं कुरान पाक की रीडिंग को तर्जमा और तफसीर के बगैर सिर्फ लेटर्स को फोकस करती थी. और इंशाल्लाह आपको ये टिप बहुत फायदा देगी कि जब आप तजवीद प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक वर्ड आप ले लें और उसको इतना स्लो डाउन करके पढ़ें कि आप हर लेटर को उसका राइट दे सके, यानी आप हर लेटर के बारे में सोचें. इंशाल्लाह आगे आपसे फास्ट चल के भी पढ़ेंगे, तो एक लेटर को परफेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें उस लेटर के बारे में सोचनी पड़ती हैं. तो आप जैसे अब फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्ड पढ़े हैं, अगर लेट्स से आप असमा ही पढ़े हैं, तो आप इसको देखें, असमा क्या आपकी टंग कैसी होनी चाहिए, आपका सीन का मखरज अच्छा हिट हुआ या नहीं हुआ, आपका अलिफ ठीक था लाइट था या नहीं था, फिर आपका हमजा तो वीक नहीं हुआ। यानी आप हर चीज के ऊपर फोकस करें। वो एक ही वर्ड लेके आप कपल ऑफ टाइम्स पढ़े ना, पहले आपको मुश्किल होगा, अच्छा नहीं यहाँ पे ये खराब हो गया, फिर उसको सही करें, फिर उसको सही करें, फिर उसको सही करें। तो आहिस्ता आहिस्ता ना आप यूज टू जब होंगे तो आप उसको तेजी से भी पढ़ेंगे ना वर्ड को, तो उसमें एरर नहीं आएगा। तो अगर आप तजवीद की प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि अच्छा आप पूरे दिन में कोई एक टाइम निकाल के एक पेज पढ़ लिया, तो इट वोंट वर्क। यानी इस तरह से ये काम नहीं चलेगा। आप एक एक लेटर को पढ़ें, एक वर्ड को उठा के उसमें से एक एक लेटर को ध्यान दें कि अच्छा कौन सा मोटा था कौन सा लाइट था, अच्छा जो हैवी था उसके साथ वाला तो हैवी नहीं हुआ। यानी इस तरह से जब आप फोकस करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लेटर में परफेक्शन जा रही है। ओवरऑल जो है वो चीज नहीं देखी जाएगी, बल्कि उस तरह जो एक एक लेटर के अंदर परफेक्शन है वो जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप तजवीद की प्रैक्टिस ऐसे किया करें, कोई कोई निकालें। और जैसे माशाल्लाह आप लोग बहुत वीक नहीं है, तो अगर आप 5 मिनट्स भी ईच डे देना तो बहुत है, बहुत है, आप फर्क देखेंगे। यानी लेकिन लेकिन 5 मिनट्स हर दिन देने होंगे। यानी आप इसमें से फिर बीच में नागा नहीं करें। ठीक है, इंशाल्लाह। मैं तो जैसे जब प्रैक्टिस करती थी तो कुकिंग के दौरान या इस तरह से जिसमें आप कोई आपका मेंटल वर्क नहीं हो रहा ना, आप थोड़ा बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए किसी काम को, तो उस दौरान जो है लेटर्स को निकाल के पढ़ा पढ़ा बीच में से। अच्छा जैसे अब मेरा बॉ ने प्रॉब्लम दिया या जैसे बॉड ने प्रॉब्लम दिया, तो मैं उस टाइम के अंदर ना इनको बहुत ज्यादा इन लेटर्स को पढ़ा करती थी कि अच्छा बॉ की साउंड अभी परफेक्ट नहीं आई या बॉड की साउंड के अंदर कमी रह गई है या इस तरह से। तो वो फिर जब आप लेटर लेटर करके प्रैक्टिस करते ना, तो फिर उससे आपकी रीडिंग के ऊपर जो है वो फर्क पड़ रहा होता है इंशाल्लाह। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, इस सिर्फ इसलिए कि यानी अजर की नीयत से। ठीक इंशाल्लाह सही है। तो अभी है हमारे पास टाइम थोड़ा सा, इंशाल्लाह कुछ सिस्टर्स का लेसन सुन लेते हैं। हम लोग सूरह नाज़िआत शुरू कर चुके थे, आयात नंबर बताइए मुझे प्लीज, 11 से 20 तक। सही, ठीक है जी, हैंड रेस कीजिए। अकबर सबमीन का टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट तो नहीं लगा? थोड़ा डिफरेंट सा है इसलिए जरा समझने में होता है, लेकिन वरना बहुत मुश्किल नहीं है। आज किसी ने लेसन नहीं सुनाना? ओके आगे हैं, साबिकून अल अवलून। ओके सही, इंशाल्लाह जी मैं माइक छोड़ती हूँ जी। फर्स्ट सिस्टर आप पढ़िए 11 till 20 सूरह नाज़िआत।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू فإنما هي زجرة واحدة
জি আমিন ওয়াইয়াকুম বারিকাল্লাহু ফিকুম জি ইটস গুড মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ আগর হাম লেন্থ কো দেখে তো জেসে ইয়াহা না 13 মে ফাইন মাহি ইসমে জো মা হে ও থোড়া সা আপকা না টু হারাকাত সে জ্যাদা জা রহা হে ফাইন মাহি ইয়ানি ইসকো থোড়া সা আপনে শর্ট করনা হে আর ইসসে পহলে জো ওয়ার্ড থা না কব ওয়াতুন খাসিরাহ इसमें नून को आपने बहुत टाइम नहीं देना यानी आपने रुकना नहीं है इसके ऊपर करवतुन खासी सॉरी करवतुन खासी रोह फिर इसी तरह से जब 13 में आपने पढ़ा वाहिदह तो ये थोड़ा हैवी हो गया दो दो करके नहीं वाहिदह दह यानी बिल्कुल मुंह को आपने ओपन रख के इसको पढ़ना है फिर कहीं कहीं ना आपका कॉफ ये थोड़ा वीक लग रहा था जैसे वर्ड अल मुको मुकद्दसी तो हैवी भी रखें और इसका हिट भी स्ट्रांग करें अल मुकद्दसी तुवा और तो को भी तू तुवा यूं करके पढ़ेंगे ठीक है सही जी जज़ाकल्लाहु खैर हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस्ट आप पढ़िए बारिकल्लाहु फीकुम
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
تھوڑا سا آپ نے نا مخرج کو واچ کرنا ہے نطعیہ والے لیٹرز کو ٹھیک ہے تا دال اینڈ بو مجھے لگا کہ جو یہ لیٹرز ہیں نا یہ ٹاپ آف ٹنگ سے آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ٹپ نہیں یوز ہو رہی یعنی آپ جیسے آپ کی ٹنگ اسٹریٹ ہے نا اوپر جا کے ہٹ ہو رہی ہے اور وہ ٹاپ سے آپ کا لیٹر آ رہا ہے تا دا تو یعنی اس طرح کی ساؤنڈ ہے تو تا دا تو یہ اس طرح کی ساؤنڈ آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں نا آپ نے تھوڑا سا اپنی ٹنگ کو یوں کرو کی سی شکل دینی ہے اور ٹپ آف ٹنگ کو یعنی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا اوپر لے کے جائیں اور گم لائن کے ساتھ ہٹ کریں اور خاص طور پر جب آپ تا کو ہٹ کریں نا تو اس میں تھوڑی ایئر آپ کی آنی چاہیے جیسے تلک زجرۃ واحدہ इसमें ना बहुत यानी टाइटनेस आ रही है, यानी तो ये आवाज आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए जी। फिर इसी तरह से जैसे वर्ड है ना अल-मुक़द्दसी, तो यहाँ पे मुझे दाल आपका एकदम फिर थोड़ा वीक होता हुआ लगा, तो इसको आपने थोड़ा वॉच आउट करना है, इन लेटर्स को, इन तीन लेटर्स को आपने थोड़ा ध्यान देना है। फिर आई नंबर 12 में जो ये वर्ड आ रहे हैं ना, इसमें आपका नून हिल गया, यानी वर्ड कर्वतुन, ये यूं कलकला की तरफ साउंड चलेगी, कर्वतुन खौसीरो, इसको आपने बिल्कुल हिलने नहीं देना, ये जो साउंड है ये मूव नहीं करेगी। फिर इसी तरह से आई नंबर 13 में जब हम मर्ज करेंगे नून को वाव के साथ ना, यानी जजरतुम वाहिदा, तो थोड़ा सा गुन्ना और करके हम इसको पढ़ेंगे। फिर 17 में जो वर्ड आ रहा है फिरऊना, इसमें भी आपका रॉ ना फिर हो रहा था, फिर नहीं, ये तो कसरा बारीक करें, दूसरा रॉ को बिल्कुल लाइट करें, इज़हब इला फिरऊना, फिरऊना बिल्कुल लाइट कर देना आपने इसको। कुछ एक जगह के ऊपर हाँ जैसे वीक लग रहा था, वाहिदा, यहाँ पर आपका हाँ थोड़ा वीक लगा मुझे, तो ओवरऑल इतना यानी कहीं और जगह के ऊपर नहीं लगा मुझे। इस वर्ड में ना 13 में जो वर्ड है जज रोथुन, इसमें आपका रॉ भी लाइट था, इसको हैवी करके पढ़ेंगे, जज रोथुन, ठीक है, इंशाल्लाह जी, जजाक अल्लाह खैरा। नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़िए।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم بارک لکم جی، اٹس ریلی گڈ ماشاء اللہ. کچھ مخارج جو ہے وہ ویک ہیں، جیسے را کا جو مخرج ہے وہ تھوڑا ویک آ رہا تھا، را کے اوپر آپ پریکٹس کریں نون کے ساتھ، ان ار جیسے بسم اللہ ہیر، یہ ٹنگ آپ کی نا بہت رول ہوتی ہے، ہیر تو وہ ہٹ نہیں ہو رہی، گم ایریا پہ ہٹ نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے را کی ساؤنڈ اچھی نہیں آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر جو لیٹر کاف ہے نا، اس کا مخرج مجھے صرف ایک جگہ کے اوپر تھوڑا اچھا لگا، مجھے مخرج اس کا تھوڑا ویک لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ بہت پیچھے سے آ رہا ہے، تو اس کو نا آپ نے فارورڈ ہٹ کرنا ہے، یعنی تھوڑا آگے کریں، مطلب آگے کی طرف ہٹ ہونا چاہیے نا، ہارڈ پیلٹ کے اوپر، تو تھوڑی سی جو ایریا آپ یوز کریں اسے تھوڑا فارورڈ ہٹ کریں، काफ की जो साउंड है ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे हम इंग्लिश में सी बोलते हैं ना, सी का कैट जैसे है, का ये आवाज आती है, इसमें थोड़ी एरी साउंड होती है, जैसे आ ई रा खू खू ना, तो ये अंदर की तरफ आपने नहीं लेके जानी, खू खू बाहर की तरफ, खू ना तिल का, ये साउंड इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। और फिर जैसे यानी काफ के मखरज को आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, फिर बाकी मुझे मखारिज में तो ऐसे कोई गलती नहीं नजर आई, कुछ सफात वगैरह की हैं गलतियां, लेकिन इंशाल्लाह जब हम वो सफात पढ़ेंगे तो ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस कर सकेंगी। अभी आपने ना आउजू इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, यानी एक तो ये कि आउ आउ जो है वो मोटा ना हो, यू नहीं आउ, फिर दूसरा जू, इसमें जू जू ये हवा हम्स नहीं आनी चाहिए, एयर की साउंड नहीं होगी इसमें, जू बिल्कुल सॉफ्टली टिप को सामने के ऊपर के दो दांतों से लगाएं और बहुत दबाना नहीं है, ठीक है, एयर को ब्लो नहीं होने देना, एयर को कंट्रोल करें अंदर की तरफ, जू बिल्कुल सॉफ्टली उसको हिट करें, ठीक है। ये आपका यानी एक तरह से होमवर्क है कि इसको थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाहु खैरा जी। नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़िए।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي आपने ना थोड़ा सा जिस चीज के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो ये कि अपनी साउंड को थोड़ा रिलैक्स करके ना बाहर की तरफ पुश करें, आपकी साउंड थोड़ी हलक की तरफ रुझान ज्यादा रख रही है ना, यानी अंदर की तरफ साउंड जा रही है, जैसे हदीस मूसा मू, अब ये बहुत दबा हुआ है यानी प्रेस हो रहा है अंदर की तरफ, मूसा मू, यू नहीं मू मूसा, बाहर की तरफ इसको पुश आउट करें, हल अताका हदीस मूसा, बिल्कुल रिलैक्स करके, इज नादाहू, ये भी ना नादाहू की साउंड आ रही थी, ये भी अंदर की तरफ आपकी साउंड जा रही थी, इवन वर्ड बिलवादिल मुकद्दसी यानी मुकद्दा अंदर की तरफ साउंड जा रही है, बिलवादिल मुकद्दसी मुकद्दसी यानी बाहर की तरफ आपकी आवाज आनी चाहिए। आपको समझ आ रहा है फर्क के मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको थोड़ा सा आपने रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, जैसे फिर आऊ ना, यहाँ पर भी ये अंदर की तरफ जा रही थी, फिर आऊ आऊ ना, इसको भी रिलैक्स करें, फिर आऊ ना, तो मुझे ओवरऑल रीडिंग के अंदर जैसे मखारिज में कोई ऐसा जीम का मखरज मुझे थोड़ा वीक लगा, बाकी जो है वो मखारिज में कुछ ऐसा इशू नहीं था, तो आपने इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, रिलैक्स और साउंड को पुश आउट करें, यानी अंदर नहीं, हलक की तरफ नहीं उसको रखना या नेजल कैविटी की तरफ नहीं लेकर जाना. जीम का मखरज मुझे जेड रोथून इसमें अच्छा लग रहा था, हाँ इस वजह से भी हो सकता है. तो जेड रोथून इसमें ठीक था, लेकिन जब आपने मीना शई तो नी रोजीम यहाँ पे पढ़ा तो इट साउंड लाइक मीना शई तो नी रोजीम, यानी जी ये बहुत दबा हुआ है, साइड्स ऑफ टंग इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, या भी बहुत प्रेस्ड है, वो अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, जीम यू नहीं, जीम मीनशैतानी रजीम, थोड़ा फॉरवर्ड हिट करके, बहुत पीछे से नहीं बोलना और रिलैक्स रखें इसको. ठीक है, इंशाल्लाह. जज़ाकअल्लाह खैरा. नेक्स्ट सिस्टर आप पढ़ें.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهلك ديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين وياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي آية نمبر 16 میں مجھے لگا آپ نے پڑھا إذ ناداه ربه. It's إذ ناداه ربه. ٹھیک ہے, اور اذهب الى, اس 17 میں نا آپ کا زال کل کلام جا رہا تھا, اذهب نہیں, اذهب الى فرعون. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے کل کلا نہیں ہونے دینا. پھر مینلی جو مخارج ہے نا اس میں آپ نے ہا کو پریکٹس کرنا ہے, ریلیکس کر کے اس کو اقساط سے نکالیں, مڈل سے آ رہا ہے, یعنی واحدہ. اب اس میں مجھے کوئی فرق نہیں لگا ہا اور ہا میں نا, واحدہ اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. بساہرہ ہل اتاکا, ایون سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے سکون کے ساتھ ویک ہوتا ہے, یہ آپ کا حرکہ کے ساتھ بھی نا مڈل سے آ رہا ہے, تھوڑا ریلیکس ڈاؤن کر کے اس کو, بیچ میں نہ روکیں, ساؤنڈ کو بالکل بیچ میں نہ روکیں. ہا 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 آہ ہا, یعنی تھوڑا اور نیچے سے نکالنے کی کوشش کریں اس کو نا. اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی پریکٹس ابھی انشاءاللہ کرنی ہے. جی باقی اوور آل آپ کا اچھی تھی ریڈنگ ماشاء اللہ. جی نیکسٹ اسٹاپ پڑھیے.
تو آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا کن عظاما نقیرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ساحرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
جی جزاک اللہ خیر اوکے جیسے آپ نے پڑھا نا کن آئی نمبر 11 میں آپ کا الف یہاں پہ شارٹ ہو گیا تھا اذا کن اور کو بھی نا کوئک ہے یعنی کن یوں نہیں کو پہلے اس کو پورا کریں پھر نون کے ساتھ اذا کن پھر لیٹر خو اور قوف ان دو مخارج پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے نقی تھوڑا فارورڈ یہ نقی بہت پیچھے جا رہے سوری یہ نا ٹنگ میں آ رہا ہے یعنی نقی قی کی طرف ساؤنڈ جا رہی ہے تو حلق سے نکالیں حلق کے بالکل اوپر والے حصے سے نقی خی روح نقی روح پھر قولو قولو اس کو آپ نے ٹنگ سے نکالنا ہے یعنی یہ ڈیپسٹ پارٹ آف ٹنگ سے آئے گا ٹھیک ہے قولو تلکا تو ان دو لیٹرز کے اوپر آپ نے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے جیسے المقدسی قوف اس کے اوپر پھر 17 میں اذهب یہاں کلکلہ آپ کا مس ہوا تھا با کا اور فتخشا یہاں پہ آپ کا خوا پہ کلکلہ ہو رہا تھا تو فتخشا اور جو ہا ہے نا اقص الحلق والا وہ بھی تھوڑا ویک ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی پریکٹس کیجیے ٹھیک ہے انشاءاللہ سوری تھوڑا میرا ٹائم اوپر ہو گیا انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑی ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر آپ میں سے کوئی اور سنانا چاہے گا ڈفرینٹ ون انشاءاللہ پھر میں اس کا لیسن نیکسٹ ویک سن لوں گی بارکم اللہ فیکم او ہاں جی نیکسٹ لیسن نہیں ریڈ کیا سوری اوکے جی انشاءاللہ 21 سے میں پڑھ دیتی ہوں 30 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکذب وعصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن شاء الله next week ملتے بارکم اللہ فیکم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته